ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर्यये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवम्। आज हम स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक नंबर 24 इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं हैं प्रह्लाद महाराज का। आज एक और महत्वपूर्ण श्लोक के द्वारा हम चर्चा करेंगे भगवान की भक्ति का। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पीछे आप दोहराइए इसको। हम जैसे चिंतामणि सकल सद्मशकल्प वृक्ष, सेम वही स्टाइल में हम इसको गा सकते हैं। मैं वैसे गाऊंगा, मेरे पीछे आप थोड़ा दोहराइए। तस्मादमोस्तनुभृता महमाशिषोग्ना, हाँ थोड़ा सा इस तरफ आइए, ये ऐसा ही है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके। तस्मादमुस्तनुभृता महमाशिषोग्ना, आयुश्रियं विभवमेन्द्रियमाविरिञ्च्यात्। नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण, कालात्मनोपनयमां निजभक्त्यपार्श्वम्। तस्मादमुस्तनुभृता महमाशिषोग्ना, आयुश्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्च्यात्। नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण, कालात्मनोपनयमां निजभृत्यपार्श्वम्। पढ़ सकते हैं। टूवर्ड मीनिंग परपट एंड ट्रांसलेशन बाय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तस्मात् अतः अमोहो, इन सारे ऐश्वर्यों तनुभृताम देहधारी जीवों के प्रसंग में अहम मैं आशीषः अग्नः, ऐसे आशीर्वाद के फल को भली भांत जानता हुआ आयु दीर्घ आयु श्रियम भौतिक ऐश्वर्य विभवम प्रभाव तथा यश इंद्रियम इंद्रिय तृप्ति के सारे साधन ब्रह्मा से लेकर एक शुद्ध चींटी तक ना नहीं इच्छामि चाहता हूँ ते तुम्हारे द्वारा विलुलितान समाप्त किए जाने वाले उरु विक्रमेणा अत्यंत शक्तिशाली काल आत्मना काल के स्वामी के रूप में उपनया कृपया ले चले माम मुझको निज भृत्य पार्श्वम अपने अत्यंत आज्ञाकारी भक्ति के संगति में। हे भगवान अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य योग शक्ति दीर्घायु तथा ब्रह्मा से लेकर शुद्ध चींटी तक के सारे जीवों का जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव हुआ है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबों को नष्ट कर देते हैं, अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं लेना चाहता। हे भगवान मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उनकी सेवा करने दें। ये बहुत महत्वपूर्ण लास्ट सेंटेंस जो प्रहलाद जी बोल रहे हैं हम इसको दोहराएंगे। हे भगवान मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा करने दें। तात्पर्य श्रीमद् अरे आई एम सॉरी क्षमा करना मुझे ये आदत नहीं गया सारी माता जी सारी तात्पर्य चलो अब ध्यान रखते हैं। थोड़ा दूर हो गया लैपटॉप। श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हुए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उल्लेखित ऐतिहासिक घटनाओं से प्रहलाद महाराज जैसे अनुभव प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुभव द्वारा यह सीखे कि पता सारे भौतिक ऐश्वर्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यहां तक कि यह शरीर जिसके लिए हम अनेक इंद्रिय आनंद प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, किंतु आत्मा शाश्वत है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा शरीर के विनष्ट होने हो जाने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मा के सुख की चिंता ना करें। वह आत्मा के चाहिए कि आत्मा के सुख की चिंता करें इस शरीर के सुख के लिए नहीं। यदि किसी को ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं जैसे दीर्घायु वाला शरीर मिल भी जाता है तो वह भी नष्ट हो जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को अमर अविनाशी आत्मा की ही चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को आत्मा रक्षा के लिए शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर छाड़िया वैष्णव सेवा मनोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, चढ़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई छे केवा। यदि कोई अपने आप को भौतिक प्रकृति के थपटों थपेड़ों से बचना चाहता है, जो भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं, तो उसे कृष्ण भावनामृत होना चाहिए और कृष्ण को पूरी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता 9:4 में कहा गया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, मनुष्य को चाहिए कि सच्चाई के साथ कृष्ण को समझें और ऐसे शुद्ध भक्त की सेवा द्वारा ही प्राप्त है, अब शुद्ध भक्त के सेवा द्वारा ही संभव है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें भौतिक ऐश्वर्य ना प्रदान करके शुद्ध भक्त तथा दास के सान्निध्य में रखें। इस जगत में प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रहलाद महाराज का अनुसरण करना चाहिए। महाजनो येन गता स पंथा, प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई संपन्न का भोग करना नहीं चाहते थे, अपितु वे भगवान के दास का दास बनना चाहते थे। उन्होंने इस मोहमयी मानव सभ्यता का तिरस्कार किया, जो भौतिक उन्नति द्वारा सुख के लिए सदा प्रयत्नशील रहती है। उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्त भी ऐसी सभ्यता का तिरस्कार करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य विभिन्न प्रकार के हैं, जिन्हें शास्त्रों में भुक्ति, मुक्ति तथा सिद्धि कहा गया है। मुक्ति का अर्थ है श्रेष्ठ पद पर स्थित होना, यथा उच्च लोकों में देवताओं का पद, जहां मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति का सर्वाधिक भोग कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक उन्नति से उबकर परम ब्रह्म से एकाकार होने की इच्छा करना। सिद्धि योगियों जैसे कठिन ध्यान द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा लघिमा महिमा इत्यादि प्राप्त करना है। ऐसे सारे लोग जो भुक्ति मुक्ति या सिद्धि द्वारा किसी भौतिक उन्नति के इच्छुक है, वे काल क्रम में दंडनीय हैं और वे पुनः भौतिक कार्यकलापों में लौट आते हैं। प्रहलाद महाराज ने इन सबों का तिरस्कार कर दिया। वे शुद्ध भक्त के निर्देशन में मात्र एक दास की भांति लगे रहना चाहते हैं। तो ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुं श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं शाग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाख कान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबके चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद मांगता हूं ताकि भगवान के बारे में कुछ तो हम चर्चा करें। मेरे मुंह से ऐसा शब्द कभी ना निकले जो प्रभुपाद जी के सिद्धांतों के विरुद्ध में है। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण। इसमें प्रहलाद महाराज, मुझे कुछ ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे भक्ति, भक्त का सेवा करने का मौका दीजिए और भक्त का दास के दास बन के मैं रहने का भाग्य दीजिए। एक्चुअली हिरण्यकशिपु बहुत शक्तिमान, इतना शक्तिमान था कि उनको देख के सब देवता इतना दुखी हो जाते थे और वो डरते थे, इतना डरते थे। आप सबको पता है, बार बार हम यही चर्चा कर रहे हैं। मगर ये हिरण्यकशिपु के बारे में ये भगवान वामन देव बलि महाराज को बताते हैं। बलि महाराज को ये हे बलि महाराज, आप इतना बड़े वंश में आपका जन्म हुआ है जिसमें ये प्रहलाद जैसे बहुत उन्नत वो तो है ही है, और आपका जो परदादा था ना वो इतना शक्तिमान था, और देखो क्या किया था और कैसे वो एक्चुअली सबको डराया, वो बताते हैं पांचवा श्लोक में, स्कंद 8 अध्याय 19 पांचवा श्लोक में। यतो जातो हिरण्याक्ष चरन्नेकै मां महीम। इस श्लोक में हे देखो बलि महाराज, आपके इसमें हिरण्याक्ष जन्म लिया है। वो अकेला गदा को पकड़ा और पूरा दिशाओं में घूम रहा था, कौन मुझको सामना कर सकता है, ऐसा कोई है मुझको सामना कर सकता है? अपना गदा को पकड़ के पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, कोई उनके पास दिखाई नहीं दिया। फिर भगवान जब बोध करने के लिए सुकर रूप में आ गए और भूमि को धरती को उद्धार कर दिया तो उनके साथ लड़ने लगे, तो उनको भगवान ने मार डाला। मगर भगवान विष्णु मारने के बाद ऐसे सोचा कि हाँ, इनसे जो युद्ध मैंने जीता ये असली विजेता मैं हुआ हूं। छोटी छोटी राक्षसों को मारने में इतना मजा, इतना मुझे तो अच्छा नहीं लगा, मगर जब इनको मैं मार दिया ना, हाँ बाकी पराक्रम बहुत अच्छा, मेरे से लड़ाई किया। और देखो उनका भाई का ये मरण का वार्ता को सुनने के बाद हिरण्यकशिपु, हे बलि महाराज, आपका परदादा क्या किया, तुरंत हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित हो गया, और क्रोधित होकर वो क्या कर रहा था, अपने हत्यारे विष्णु के मारने के लिए उनके धाम चले गया, उनके निलय में। सातवें श्लोक में, निशम्य तद्विदं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा हन्तुं भ्रातृहनं क्रुद्धो जगाम निलयं हरे। जगाम चले गया निलयम, हरि के निलय में, विष्णु भगवान के निवास में पहुंच गया। और विष्णु भगवान के निवास में पहुंच गया तो विष्णु भगवान देखते हैं ये शूल पाणी होके, शूल धारण करके ये हिरण्यकशिपु आ रहा है। देखो बलि महाराज, आपका कुल में क्या क्या कितने शक्तिमान हैं। उनको देख के विष्णु भगवान देखते हैं ये तो ऐसे मेरे पीछे पड़ा है, जैसे हर जीव के पीछे मृत्यु होता है, मेरे पीछे ये पड़ा है। तो भगवान क्या सोचते हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं, वामन देव बता रहे हैं, हे दानवराज विष्णु इस प्रकार सोच के वो क्या करते हैं, ये तो मेरे पीछे पड़ेगा पड़ेगा, मैं ऐसे ही चुप जाऊंगा कि इसको पता नहीं चलेगा। वो क्या करते हैं, उनके ही नथनों में प्रविष्ट हो जाते हैं, उनके ही नथनों में इधर प्रविष्ट हो जाते हैं, ये इधर उधर देखते हैं। हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिमान, इधर उधर पूरा देख रहे हैं, अरे विष्णु के निवास में गया, विष्णु भी नहीं दिख रहे, विष्णु किधर गया किधर गया, लग रहे गया गया, ऐसे गया जिधर से बाहर नहीं आ सकता, आ नहीं सकता। तो ये देखो कह के फिर वो फिर कहते हैं, ये हिरण्यकश्यप विष्णु के प्रति इतना क्रोधित हो गया है, अपना जब तक नहीं मरा तब तक उसके अंदर क्रोध वैसा ही था विष्णु के प्रति। ऐसा है ना, जो देहात्म बुद्धि वाले मिथ्याहंकार अज्ञान के कारण ऐसे क्रोधित होते ही रहते हैं। मगर तुम देखो प्रह्लाद के पोता हो और तुम सब कुछ कर सकते हो, तो ऐसा करके बलि महाराज को बताते हैं। तो बलि महाराज को स्वयं भगवान वामन देव ये पूरा हिरण्यकश्यप के बारे में बहुत उन्नत स्थिति में, उनका इतना शक्तिमान था, मगर प्रह्लाद महाराज कोई भी डरे, मगर ये प्रह्लाद जो 5 साल का इतना छोटा बालक था वो नहीं डरा, क्योंकि प्रह्लाद भगवान का शुद्ध भक्त था। भगवान के भक्त जो भी है वो कभी डरते नहीं। तो अगर हम भगवान के भक्ति करते हैं, हमारे अंदर भी जो भी डर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। एक्चुअली असली में डर किस लिए है, क्योंकि ये शरीर चले जाएगा, हम मर जाएंगे। अरे मरना है, मरना तो है ही है। तो मरने के पहले हम अगर भगवान के शरण लेते हैं, भगवान के सेवा में लग जाते हैं, मरना तो है ही है, थोड़ा तो हम सेवा करें और जन्म मृत्यु चक्कर से थोड़ा बाहर आने का प्रयत्न तो कर सकते हैं। जब हम भगवान के प्रति पूरा शरणागत हो जाते हैं, हमारे अंदर जो भी डर है वो भाग जाएगा, क्योंकि मरना है तो मरना ही है। जब हमारे मन में ये सिद्धांत बिल्कुल मन में आ जाता है, तो मगर जब हम ये भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं, तुरंत ये जो है माया हमें पकड़ के हमें दंड देती है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुखा अतएव माया तेर देया संसार दुख, कभी स्वर्ग उदाया कभी नरक डुबाया, दंड जेन राजेन नडिते चबाय। देखो राजा जैसे दंड देता है, कभी पानी में डुबाया और कभी बाहर निकाला, एक मिनट सांस लिया फिर उसको पानी में डुबाया, वैसा ही ये माया हमें सार प्रकार का दंड देते ही रहती है, जब तक हम कृष्ण को याद नहीं करते। कृष्ण को भूल गया ये पूरा कष्ट। हम सच्ची में ये भोग वांछा से बाहर आने का प्रयास ही नहीं करते। जैसे महाराज रजी का वर्णन आता है स्कंद 9:17 अध्याय में, महाराज रजी बहुत शक्तिमान था इस धरती पर, और इंद्र देख रहा है असुरों का आक्रमण बार बार हो रहा है, और कभी इंद्र हार जा रहा है और ये असुरों से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, और देखते हैं कौन हमें सहायता करेगा। वो देखते हैं उनको नजर में आया ये महाराज रजी, जिनका वृत्तांत 9:17 में है। तो रजी महाराज रजी से इंद्र प्रार्थना करते हैं, हे महाराज रजी आप थोड़ा सा ये असुरों से युद्ध करो और ये असुरों को संहार करो, हमारा सीट हमारा कुर्सी जो है बार बार हिल रहा है। तो महाराज रजी आते हैं और उनका 500 पुत्र, श्रीमद् भागवतम में बताया गया 500 पुत्र जो उनके तरह बलशाली थे, इक्वली शक्तिमान, उनके तरह इक्वली बलशाली थे, वो सब मिलके असुरों को मार डालते हैं। असुरों को मारने के बाद इंद्र देखते हैं असुरों को तो मार डाले, अगर आप फिर चले गए तो असुर फिर मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और देवताओं को हारना ही पड़ेगा। प्लीज हे रजी, हे महाराज रजी, आप स्वर्गाधिपत्य को स्वीकार करो, आप ही स्वर्ग का राजा बनो, मेरा कुर्सी आप ले लीजिए, मेरा सिंहासन आप ले लीजिए और इसका आप चलाइए। तो रजी ने कहा अरे स्वर्ग में इतना अच्छा भोग, इतना भोग किधर मिलेगा, जितना भी भोग हो थकते नहीं, जो चाहिए भोगना चाहते हैं, सब कुछ अवेलेबल, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ उपलब्ध है। तो महाराज रजी स्वर्ग में ऐसे भोगते भोगते बहुत दिन इसका मजा लिया और एक दिन बस काल सब कुछ हरण लेता है, उसका देहांत हो गया। जब उसका देहांत हो गया तो उनके 500 पुत्र, उनमें से जो भी बड़ा पुत्र है वो राजा बन गए, इंद्र बन गए, इंद्र का सिंहासन बैठ गए, इंद्र के सिंहासन के ऊपर बैठ गया। फिर इंद्र देखते हैं अरे ये क्या है, अब मेरा खुशी कभी मिलेगा नहीं क्या? तो रजी के पुत्रों से पूछते हैं देखो ये इंद्र का सिंहासन ना आपके पिताजी को महाराज रजी को मैंने दिया था, मैंने उनके चरणों में प्रार्थना किया था कि आप इस सिंहासन पर बैठो ताकि ये असुरों हमारे ऊपर आक्रमण ना करें और हमारा हार ना हो, मगर अब वो तो मर गया, अब तो शरीर छोड़ दिया है, तो मैं ही इंद्र का ये स्वर्ग का राजा हूं, मैं इंद्र हूं, जो यज्ञ का जो भी है फल मुझे मिलना चाहिए, चलो कुर्सी खाली करो, मैं इंद्र का अब कुर्सी पर बैठूंगा, सिंहासन पर मैं बैठूंगा। अब ये रजी के पुत्र बताते हैं देखो कोई राजा अगर मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, कौन राजा बनते हैं बताओ? उनका पुत्र, जो भी पुत्र है बड़ा पुत्र है वो पुत्र बनता है। अब हमारा पिता स्वर्ग का राजा था और वो मर गए तो हम ऑटोमेटिकली हम बने। ठीक है आप यज्ञ का भाग लेना चाहते हैं, ठीक है यज्ञ का भाग आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, मगर हम स्वर्ग में आ गए, हम जाएंगे नहीं, स्वर्ग का सुख को भोगना चाहता है। तो इंद्र को समझ में नहीं आता अरे मैं क्या करूं, ये तो ऐसे पकड़ लिए हैं, उनको मैं ऐसा ही प्रार्थना किया था बैठने के लिए, वो बैठ के राज्य कर रहा था, स्वर्ग का सिंहासन पर बैठ गया था, अब ये लोग नहीं जा रहे। तो अपना गुरु महाराज, अपना गुरु बृहस्पति के पास जाके बताते हैं हे गुरु ये ऐसे हो रहा है, हे महाराज मुझे कुछ तो उपाय बताइए। बृहस्पति बताते हैं देखिए ये लोग नीति मार्ग में चल रहे हैं, अगर ये अविनीति मार्ग में अधर्म बन जाते हैं तो तुम इसको मार सकते हैं, जब तक ये नीति मार्ग में है ना तुम उसको कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत शक्तिमान है। तो इंद्र पूछते हैं मैं क्या करूं, आप ही कुछ काम करो, मुझे वरदान दो कि मैं उस सिंहासन पर फिर से बैठ जाऊं। फिर बृहस्पति ये 15 श्लोक में बता रहे हैं 9:17-15। बृहस्पति क्या करते हैं, एक यज्ञ एक हवन करते हैं, एक हवन करते हैं, उससे ऐसे जो भी है उत्पन्न होना है ऐसे उत्पन्न हुआ है और उन रजी के पुत्रों को गलत मार्ग पर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो अधर्म के मार्ग में चलना शुरू करते हैं और बलहीन हो जाते हैं। इंद्र उनको मार के हर एक को मार डालते हैं, 500 में एक भी नहीं बचा। मार्गान्न कश्चिदव दव शेषितः अवशेषितः, एक भी एक शेष भी नहीं बचा, सबको मार डाले। फिर इंद्र सिंहासन को अधिष्ठान कर ले। ये हम देख रहे हैं, ये भोग वांछा किसी के अंदर से निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर हम भगवान के भक्त बनते हैं, ये जो भोग वांछा थोड़ा 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 करके हम निकल जाएगा और हमारे जो प्रेम है भगवान के साथ हो जाएगा, भगवान को हम हृदय में प्रतिष्ठा करके ये भोग वांछा से हम दूर हो सकते हैं, एक तरफ। दूसरा वृत्तांत है जो खटवांग महाराज का वृत्तांत। खटवांग महाराज ऐसा ही रजी के जैसे बहुत शक्तिशाली थे, और एक समय देवताओं जाके खटवांग महाराज से प्रार्थना करते हैं, खटवांग महाराज आप हमारे ये असुर लोगों को मार दीजिए, असुर लोगों को मार के हमारे सहायता करो। तो खटवांग महाराज जो धरती पर पालना करते थे वो तुरंत स्वर्गलोक में गए, और असुर जो भी आते हैं सब असुरों को हरा कर वो स्वर्ग को सुरक्षित कर दिए। जब देवता इतना प्रसन्न हो गए उनसे, देवता पूछते हैं आपको जो भी चाहिए आप मांग लीजिए, आपको हम दे देंगे। खटवांग महाराज एक ही पूछते हैं, क्योंकि वो भगवान का भक्त था, भगवान को सदा याद कर रहा था, तो वो पूछते हैं देखिए मुझे एक चीज बताइए, मेरा आयु कितना है धरती पर। आप तो कह रहे हैं जो चाहिए वो ले लीजिए, वो तो बाद में, मेरा आयु कितना है। वो कहते हैं एक मुहूर्त बचा है, मतलब कुछ समय, कुछ मिनट्स, कुछ निमिष। तो वो तुरंत धरती पर आ गए और भगवान की सेवा में पूर्णतया मन लगाकर बैठ गए। तो भगवान की सेवा में इतना पूर्णतया बैठने के बाद वो भगवत धाम चले गए, और स्वर्गलोक का भोगना फिर वापस आना ये पूरा नहीं किया। एक तरफ हम रजी का देख रहे हैं, रजी को भी स्वर्ग मिला था और स्वर्ग को भोग के वो बस वो मर गया, मरने के बाद क्या क्या हुआ पता नहीं। दूसरी तरफ ये खटवांग महाराज, उनको तो सब कुछ देने के लिए देवता रेडी थे, मगर वो धरती पर आ गए, पूरा का पूरा भगवान के सेवा में लग गए और भगवत धाम चले गए। देखिए यही बुद्धिमत्ता है, अगर हम भगवान की सेवा इसमें जाना चाहते हैं तभी हमें कुछ तो फायदा होगा ये मनुष्य जीवन का। एक बार पांडवों के पास, पांडव महाभारत युद्ध जीत गए और राज्य पालन कर रहे हैं, बहुत साल राज्य पालन कर रहे थे। एक बार एक सुकुड़ा रोगिष्ट व्यक्ति आते हैं उनके दरबार में, सहदेव से एक प्रश्न पूछते हैं, हे सहदेव मैं कुछ अजीब चीज देखा हूं, ये ऐसे कैसे हो रहा है, मैं महाराज से मिलके, महाराज युधिष्ठिर से मिलके उनसे थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं, ये क्या हो रहा है। सहदेव कहते हैं महाराज युधिष्ठिर बहुत व्यस्त है, जो भी है मुझे बताइए। तो बताते हैं ये एक महिला पानी निकाला बड़ा गड़ा से और चार गड़ों में उस पानी को डाला, पानी को डालने के बाद फिर वो चार गड़ों में से जब ये जो ओरिजिनल गड़ा था उसमें जब डाल दिया तो देखती है उसमें तो आधा पानी ही आया, ये क्या है ये कैसे हुआ। सहदेव बोलते हैं अरे मुझे तो पता नहीं लग रहा है, हम चलते हैं नकुल के पास। नकुल के पास जाके फिर यही कहते हैं मैं बहुत अजीब चीज देखा हूं, मैं महाराज से बात करना चाहता हूं। फिर नकुल यही बोलते हैं महाराज बहुत व्यस्त हैं, जो भी बोलना है मुझसे बोलो। देखो मैं आते आते देखा ये बजूका स्केयरक्रो जो फसल का रक्षा के लिए रखा गया, और मैं देख रहा था अरे अरे ये क्या हो रहा है, ये तो अरे ये तो उधर से लेके आए राम, ये खा रहा है, ये भोजू का ही खा रहा है। हाँ मैंने ये देखा। हे नकुल भैया, हे राजकुमार नकुल, आप बताइए ये क्या है, ये क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। नकुल बोलते हैं, अरे ऐसा चीज तो मैं कभी नहीं सुना हूं, ऐसे कैसे हो रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा भाई भीम जो है ना, बहुत बुद्धिमान है, उनके पास जाते हैं। बुद्धिमान भीम के पास गए, वो बोल रहे थे, मगर ये फिर बोलने लगा, देखो मैं अजीब सा चीज देखा हूं, मैं महाराज से ही बोलना चाहता हूं। देखो महाराज बहुत व्यस्त है, जो भी कहना है मुझसे कहो, मैं हूं भीम, तुम्हारा जो भी समस्या है मैं सॉल्व कर सकता हूं। अच्छा ठीक, मैं आके देख रहा था, एक बड़ा सा मोटा सा हाथी और सुई का छोटा सा नोक, अरे उसके अंदर से घुस गया, मगर उसका पूंछ, अरे उसका पूंछ जो है सुई के नोक में अटक गया। हाँ भीम बोलते हैं, अरे सुई के नोक में हाथी घुस के चले गया मगर पूंछ अटक गया, ये क्या बात है, ये तो मुझे तो समझ, हाँ यही तो ठीक है। हम अर्जुन के पास जाते हैं जो सबसे बुद्धिमान है, अर्जुन के पास गए, हाँ बताओ, फिर ये बताते हैं, देखो अर्जुन मैं बहुत विचित्र चीज देखा हूं, मैं महाराज के पास जाके बोलना चाहता हूँ। नहीं नहीं महाराज व्यस्त है, जो भी कहना है मुझे बताओ, मेरा देखो, देख रहे हो ना, बहुत व्यस्त हैं हम लोग। तो बोलते हैं, देखो मैंने क्या देखा, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, हाँ इस पहाड़ को बांध दिया, पता नहीं कैसे बांधा है और पकड़ के खींच रहा है, उस पहाड़ को खींच रहा है। ये मूर्ख है, हे ए लड़का क्या खींच रहे हो, रस्सी टूट जाएगा, तू गिर के मर जाएगा, क्या कर रहे हो, ए मूर्ख हो क्या। मैं देख रहा था कुछ ही देर के बाद, अरे बाप रे, वो पहाड़ गिर के चूर चूर हो गया। हाँ ये कैसे हुआ, अरे मैं तो कभी नहीं सुना, मैं तो गांडीव से बाण चलाता हूं, चूर चूर करता हूं, ये बालक तो छोटा सा रस्सी, हाँ ऐसे हो गया। सब मिलके बोलते हैं, देखो भाई तुम इधर ही रुको, हम अभी राजा के पास जाते हैं, हमारे भाई के पास जाते हैं, पूरा बताते हैं, तुम इधर ही रुक जाओ, हम अभी आएंगे, तुम इधर ही रुक जाओ। भैया भैया ऐसे आया आदमी, ऐसे ऐसे बोल रहा था, पकड़ो उसको, हमारे राज्य में आने नहीं देना उसको, पकड़ो। सब लोग कुछ भी बात नहीं किया, पकड़ो उसको। आके देखते हैं, वो तो है ही नहीं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, पूरा देखते हैं, नहीं मिला। युधिष्ठिर महाराज वापस आते हैं अपने भाइयों के साथ, आ गया, वो तो आ ही गया। सब भाई पूछते हैं, कौन है भैया, कौन है। वो है कली, कली का प्रवेश हो गया है, और वो बता रहा था वो मेरा प्रवेश से क्या क्या होता है, इसका मतलब ये भी है कि हमारा काम खेल खत्म, हम वन प्रस्थान करना चाहिए। भैया भैया वो क्या बोल रहा था, पानी एक गड़ा में भरा था और चार गड़ों में उसको बांटा था और देखा फिर वापस डाला तो आधा आया, ये क्या है। युधिष्ठिर बताते हैं, कलयुग में माँ अपने चार बच्चों को प्रेम इक्वल समान रूप से बांटती है, मगर जब वो बूढ़ी हो जाती है तो ये चार मिलके उनका आधा का प्रेम भी दिखा नहीं सकते हैं। कलयुग का यही है, अपना अपना काम में वो लग जाते हैं, अपना अपना भौतिक इंद्रिय सुख में लग जाते हैं। अच्छा तो ये क्या है भैया, ये बजुका खा रहा था। महाराज बताते हैं, कलयुग में जो है रक्षक ही भक्षक बन जाता है। और ये क्या है, हाथी तो अटक गया, ये क्या है भैया। बड़े 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 जो है कल्प्रिट्स, चोर, बड़े बड़े चोर बच जाते हैं, छोटे छोटे चोर पकड़े जाते हैं। कलयुग का यही लक्षण है। भैया ये क्या है, वो बच्चा खींच रहा था और वो तो एकदम पहाड़ चूर चूर हो गया, ये क्या है? हाँ, कलयुग में ये महान गुण है। इतना दोष होने के बाद भी अगर हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं, पहाड़ जैसे बहुत बड़ा पर्वत भी, पाप का पर्वत भी चूर चूर हो जाएगा। तो इसलिए हम भगवान के प्रति आसक्त होना चाहिए। अगर नहीं, हम बड़ा प्रसन्न हैं भगवान को भूलने के बाद भी हमें बड़ा खुशी मिल रहा है, तो ये है खुशी। हाँ, पंखा चल रहा है, उसमें प्लग भी नहीं रखा, सोच रहा है पंखा चल रहा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा चल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? अगर कोई कहती कितना अच्छा चल रहा है, मैं 5,000 का बढ़िया सा पंखा लेके आया, कितना अच्छा चल रहा है, देखो मूर्ख, तुम प्लग भी नहीं लगाया, सोच रहे हो ये चल रहा है, ये कोई चल रहा है, हवा से चल रहा होगा, उंगली से घुमा रहे होगा तुम, ये कोई चलने का नहीं है। जब तक आप नहीं जोड़ते हो प्लग से, तब तक नहीं चलेगा। जब तक हम भगवान से नहीं जोड़ते हैं, तब तक हमें खुशी प्राप्त नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर हम पैसे के पीछे, स्त्री के पीछे, घर के वाहन के पीछे हम दिन रात मेहनत किया, तो ऐसा ही आ गए, मिल गए, थोड़ा दूर है, अरे थोड़ा दूर है, तुम किधर भाग रहे हो, अरे मिल जाता है, देखो पैसे मिल जाता है, मेरा स्त्री को मैं अच्छा देखभाल करूंगा, मिल जाता है। मरने के बाद ये मरने के बाद भी ये हाँ मिल जाएगा। बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इसको, कंकाल, मर गया वो, गोश्त बन गए गोश्त। इसलिए हमारे पास एक की अपॉर्चुनिटी है, एक है। ये जैसे भगवान के आध्वर्य में कठपुतली के जैसे नाचे, या ये बंदर को नचाने वाला दिख रहा है आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बंदर को जैसे वो बंदर डमरू बजाता है, बंदर नाचता है। जब बंदर अच्छा नाच रहा है, ये बोलते हैं अरे अच्छा पैसा मिल रहा है, और एक बार नाचो। नहीं नाचता हूं मैं, अरे इतना नाचा हूं ना, फट 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 मार बढ़ता है। अगर नाचेगा नहीं, ऐसा ही मैं खड़े रहता हूं, तो नाचते नहीं क्या, मार पड़ता है। अच्छा नाचा और नाचना है, और नहीं नाचा तो मार पड़ता है, नहीं नाचा मार पड़ता है, नाचा तो भी मार, नहीं नाचा तो भी मार पड़ता है। कठपुतली बना, अच्छा शो किया, अच्छा नाच रहा है, कठपुतली को कोई नहीं कहते, कठपुतली को चलाने वाला को बोलता, अरे कितना अच्छा चला रहा है कठपुतली, मुझे तो कोई नहीं, नहीं चला रहे, ऐसा ही रह गया, मेरा कोई नहीं, अरे ऊपर वाला नहीं चला रहे, वो कठपुतली चलाने वाला जो भी है नहीं चला रहा है, कठपुतली को कोई कुछ नहीं कहता, उनको कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो चला रहे। अगर हम भगवान के ऐसे कठपुतली बनते हैं, तो हमारा कोई दुख, कोई कष्ट नहीं होगा, नहीं तो हमें दुख ही है। और ये जन्म मृत्यु चक्कर में हम पड़े रहेंगे, बाहर आएंगे नहीं। छोटा बच्चा बड़ा हो गया अपना फैमिली, और बूढ़ा हो गया मर गए। मरने के बाद पता नहीं घोड़ा बना, तितली बना, क्या है ये, शेर, गधा, लोमड़ी है, कुछ गधा बना, ये 84 लाख योनियों में घूम के फिर मनुष्य शरीर में रहा, फिर भगवान का सेवा नहीं किया ठीक से, फिर मर गया, फिर कुत्ता बना, तितली बना, बंदर बना, फिर मनुष्य जन्म मिला, ये चल रहा है। इसीलिए हम आंख खोल के भगवान की सेवा करना चाहिए। सिंपल चीज, एक बच्चा कीचड़ में खेल रहा है, इतना कीचड़ में खेल रहा है, मम्मी आ गया, मैं भूख लग रही है, खाना दे दो, मैं आ रहा हूं, मम्मी आए देगी, मम्मी अंदर आने के लिए सम्मत हो जाएगी, मम्मी बोलते रुक जाओ, तू किधर हो, तो कीचड़ इतना कीचड़ है घर के अंदर, पहले गेट बंद कर देगी, हट हट तू पहले बंद, तू मत आओ, ये लो बकेट का पानी, इससे पूरा पहला जो भी मैल है निकालो, फिर अंदर आओ, नहीं तो घर पूरा खराब हो जाएगा। कोई अंदर आने देते हैं? आप सोचिए, कोई अंदर आने देते हैं इतना हो जाए? तो पहले साफ कर लो, अपने आप साफ करके अंदर आओ, कपड़े उतारो, जो भी करना है करो। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह इतना भरा पड़ा है, अगर भगवान के धाम में जाना है तो भगवान आने देगा? इतना कलमश रख के तुम नहीं भैया, तुम नहीं आ सकते। पहले अपने आप को साफ करो, अपने आप को साफ करके अंदर आओ, फिर तुमको प्रवेश है। तो अगर हम ये काम क्रोध लोभ मोह से बाहर निकल के, कलमश उनसे बाहर निकल के बाहर नहीं आते हैं, भगवत धाम मिलना इम्पॉसिबल है। अगर हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए भी अगर हम ये सोचे कि मैं क्यों जप कर रहा हूं, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा? हाँ देख रहा है ना, हाँ हरे कृष्ण हरे, हाँ दिखाओ, इससे एक्चुअली क्या फायदा? ठीक है थोड़ा फायदा तो है ही है, मगर पूरा का पूरा फायदा नहीं मिलता। तो हरे कृष्ण महामंत्र अकेला है जो हमें प्यूरिफाई करेगा, हमें कलमश से निकाल के भगवत धाम पहुंचा देगा। वो भगवान के भक्त बन के, भगवान के जो भक्त बने हैं उनके सानिध्य में, उनके सेवा करके और उनके सांगत्य में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। उनके सांगत में रह के जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छी तरीके से हम जब करते हैं, भगवत धाम जरूर हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्ण हरे। आपका अगर कुछ प्रश्न रहा तो पूछ सकते हैं, एक मिनट। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं लाए, वो दूसरे कंप्यूटर में। ओके बहुत बढ़िया, दूसरा कुछ शॉर्ट स्टोरी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।